ओम शांति। बहुत सुंदर आज का ये विषय रखा है, एनहेंसिंग इनर पावर्स फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। हर कोई इंसान इस संसार के अंदर सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है और शांतिमय जीवन जीना चाहता है। एक कहानी याद आती है कि जब हर कोई शांति की तलाश में है तो कौन सी शांति हमें चाहिए। एक बार एक राजा ने अनाउंस किया कि मेरे राज्य में कोई ऐसा आर्टिस्ट हो कि जो शांति के ऊपर चित्र बनाए, उन्हें मैं इनाम दूंगा। काफी आर्टिस्ट आए, हर एक ने अपने अपने तरीके से चित्र बनाए। जब सबने संपन्न कर लिया तो राजा को बुलाया गया कि अब आप आकर के देखो, और जिस चित्र को माने जो चित्र बहुत अच्छा हो उसको इनाम मिलेगा। राजा एक एक चित्र को देखने लगा, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, लेकिन एक चित्र बहुत सुंदर था। राजा ने उसको चॉइस तो किया कि जहां पर इतनी प्राकृतिक शांति दर्शाई हुई है, एक झील है, बड़ी शांत है, चारों ओर पहाड़ थे, वो पहाड़ के और बादल का प्रतिबिंब उस झील के अंदर पड़ रहा था, पर इतना सुंदर दृश्य था कि हर कोई को यही महसूस हुआ कि इसी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। लेकिन राजा उसको निकालते हुए आगे बढ़ा देखने के लिए कि और कौन से चित्र है, तो राजा ने एक दूसरा चित्र पसंद किया। और दूसरा चित्र ये था कि बहुत घनघोर बारिश है, बिजलियां कड़क रही है, खूब तूफान चल रहा है और इतना तेज से झरना बह रहा है आवाज करते हुए, और जहां से झरना बह रहा था वहां नीचे एक छोटी सी गुफा जैसा था, जिस गुफा में एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ बैठी थी, बड़ी शांति से। राजा ने उसको पहला इनाम दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि इसमें राजा को क्या शांति नजर आई, तो राजा ने एक्सप्लेन किया कि शांत सुरम्य वातावरण हो और वहां शांति का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज हर इंसान को कौन सी शांति चाहिए कि चारों ओर तूफान है, जीवन में परेशानी है, स्ट्रेस है, और ऐसे वातावरण में भी अगर वो चिड़िया जिस तरह से अपने बच्चे के साथ शांति से बैठी है, ऐसा अगर हमारा जीवन हो, वो शांति हमें चाहिए। हमें कोई इस दुनिया से भागना नहीं है, इन तूफानों से डर करके चले नहीं जाना है कहीं जंगलों में पहाड़ों में, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी हमारी मनस्थिति शांत कैसे रहे, ये तरीका हमें जरूरी है। और उसके लिए जो शक्ति चाहिए अपने मन को डिसिप्लिन में रखने की, शांत रखने की, वो शांति वास्तव में ہمیں ضروری ہے جیون کے اندر، اور ہر کوئی یہی شانتی چاہتا ہے. دوسرا، ہر کوئی جیون کے اندر سکھ چاہتا ہے. سکھ کی پراپتی کیسے ہو؟ سکھ کہاں سے ملے گا؟ بہت سندر ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ایک بار ایک ویکتی نے خوب بھکتی کیا اور بھگوان پرسن ہو گئے. جب بھگوان پرسن ہو گئے تو بھگوان نے کہا، مانگو، جو مانگو گے مل جائے گا. تو وہ ویکتی نے کہا کہ پربھو، میں جیون میں ہمیشہ سکھی رہنا چاہتا ہوں، کبھی دکھی نہیں ہونا چاہتا. ایسا کوئی ودھی بتاؤ، ایسا کوئی منتر بتاؤ، ایسا کوئی طریقہ بتاؤ، میں سدا سکھی رہوں، دکھی نہ ہوں. بھگوان مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے. اور بھگوان نے کاوڑ دیا اس ویکتی کو، اور کاوڑ میں ایک طرف سفید کپڑا تھا، ایک طرف کالا کپڑا تھا. اور اس ویکتی کو دیکھ کر کے کہا، وہ دیکھ کر کے کہا کہ بھئی دیکھو، یہ کالا کپڑا جو ہے اس کو پیچھے رکھنا، سفید کپڑا آگے رکھنا، اور جیون میں چلتے رہنا تو سدا سکھی ہو جائے گا. منوشیہ کو بڑا آشچریہ ہوا کہ سفید کپڑا آگے اور کالا کپڑا پیچھے رکھنے سے کیسے سکھی ہو جائیں گے. پوچھا پربھو کو کہ یہ کالا کپڑا کیا ہے اور سفید کپڑا کیا ہے؟ تو بھگوان نے کہا کہ جیون کی یاترا میں تم جب چلتے جاؤ گے تو تمہیں بہت سارے لوگ ملیں گے. ہر انسان کے اچھائی، ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. لیکن جب بھی تم جیون کی یاترا میں چلو گے اور تمہیں کسی کی برائی نظر آئے تو اس برائی کو پیچھے ڈال دینا، کالے کپڑے میں ڈال دینا. اور جب تم کو کسی کی اچھائی نظر آئے تو سامنے سفید کپڑے میں ڈال دینا اور چلتے رہنا. کہا ٹھیک ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں. جیون میں چلتا گیا، جب بھی کسی کی اچھائی دکھائی دیتی تھی سامنے رکھتا تھا اور اسی اچھائی کے آدھار پر ویوہار کرتا تھا. اور جیون میں چلتے چلتے جب بھی کسی کی برائی نظر آتی تھی پیچھے ڈال دیتا تھا اور چلتا تھا. بھگوان نے یہی کہا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ویوہار کرو تو اس اچھائی کے آدھار پر ویوہار کرنا، برائی کو سامنے کبھی نہیں رکھنا. اور سچ مچ وہ بہت سکھی رہا. لیکن ایک دن وہ سویا ہوا تھا اور اچانک بھوکمپ آیا، اور اتنا زور کا بھوکمپ آیا، وہ اٹھا ہڑبڑاہٹ میں اور اپنا کاوڑ لے کر کے بھاگنے لگا، اور غلطی سے کالا کپڑا آگے ہو گیا، سفید کپڑا پیچھے ہو گیا. اور جب بھی کسی کو ملتا اس کو دھیان میں نہیں رہا، کالا کپڑا آگے ہو گیا، سفید کپڑا پیچھے ہو گیا. اب جب بھی کسی کو ملتا، برائی دکھائی دے تو سامنے ڈالتا، اچھائی دکھائی دے تو پیچھے ڈال دیتا. اور جب بھی کسی سے ویوہار کرے، اس برائی کو سامنے رکھتے ہوئے ویوہار کرے گا. تب سے لے کر کے منوشیہ دکھی ہونے لگا. آج پنہ اپنے کاوڑ کو بدلی کرنے کی ضرورت ہے. کالا کپڑا پیچھے، سفید کپڑا آگے. جیون میں سدا سکھی رہنے کے لیے ہر انسان کی اچھائی کو دیکھ کر کے ویوہار کرتے چلو، کبھی دکھ نہیں ہوگا. ہر انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں ہی ہے. اچھائی کو دیکھ کر ویوہار کرو، برائی کو نہیں. اور اسی لیے جب اس نے کالا کپڑا آگے سفید کپڑا پیچھے ہو گیا، دکھی ہو گیا، پھر بھگوان کے سامنے کہنے لگا کہ ہے پربھو یہ کیا ہو گیا، بھگوان کہتے تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا، کاوڑ بدلی کر دو. تم مجھے پرارتھنا میں کہتے ہو کہ ہے پربھو میرے اوگڑ چت نہ دھرو، کہتے ہو نا. آج پربھو ہمیں کہہ رہا ہے کہ بندو ایک دوسرے کے اوگڑ چت نہ دھرو، اس کو پیچھے ڈال دو اور اچھائی کے آدھار پر ویوہار کرنا شروع کرو. تو تیار ہے، تیار ہے کاوڑ بدلی کرنے کے لیے، تیار ہے سدا سکھ شانتی. اور اس کے لیے آنترک شکتیوں کو وکست کرنا ہوگا. شکتیاں باہر نہیں ہے، شکتیاں بھیتر ہی ہے، اور ان شکتیوں کو وکست کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو منشیہ جیون کے اندر کئی شکتیاں ہوتی ہے، لیکن آج جس شکتی کی ہم بات کر رہے ہیں، آنترک شکتیاں جو بھیتر سے ہمیں اجاگر کر کے باہر نکالنی ہے. باہر سے لے کر کے اندر نہیں ڈالنی ہے. لائف ہمیں یہی بار بار سبق دیتا ہے کہ ویکتی کے بھیتر اتھا شکتی، اتھا کشمتا ہے، اور اگر اس شکتی اور کشمتا کو ہم مکھ کچھ شکتیوں کے روپ میں پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کو آٹھ شکتیوں کے حساب سے ہم یہ کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو شکتی آج کے یوگ میں بہت ضروری ہے سفلتا جیون میں حاصل کرنے کے لیے، سکھ شانتی سے جیون ویتیت کرنے کے لیے، اور جیون میں ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے. اور وہ آٹھ شکتی کون سی ہے جو ہر انسان کو ضروری ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی شکتی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہو آپ سبھی، کیا سمجھتے ہو سب سے پہلی شکتی منشیہ جیون میں کون سی آوشک ہے؟ شکتیاں من کے اندر ہی ہیں، من کے پاس ہی اتھا شکتی ہے، لیکن اس میں بھی سب سے پہلی شکتی ہمیں کون سی چاہیے؟ نشچے کی شکتی، سہن شکتی. اور سب سے پہلی شکتی جو آوشک ہے وہ ہے سننے کی شکتی. آج ویکتی کے پاس سننے کی شکتی نہیں ہے، سن نہیں سکتا ہے. جتنا مرضی بولنے کے لیے کہا جائے بول سکتا ہے، لیکن سننے کے لیے کہا جائے تو سننے کی طاقت نہیں ہے. لیکن آپ سب کی تو سننے کی طاقت کو داد دینا چاہیے، صبح سے لے کر کے آپ سن رہے ہو. اتنا گھنٹہ کبھی سنے نہیں ہوں گے آپ نے، ہے نا، جتنا یہاں بیٹھ کر کے صبح سے لے کر کے شام تک آپ کو اتنے سارے کیا لیکچر سننے کو ملتے ہیں. تو سننے کی شکتی ہے نا سب کے پاس، لیکن پریکٹیکل لائف میں، ویوہار میں، گھر میں سننے کی شکتی نہیں ہوتی ہے. اسی کے کارن کتنے کلیش ہوتے ہیں، کتنے سمبندھ ٹوٹتے ہیں. چلو آپ سب کے پاس سننے کی شکتی ہے، یہ تو پرمانت ہو گیا کل سے لے کر کے، صبح سے لے کر آپ سنتے جا رہے ہو شام تک رات تک، ہے نا. टेस्ट कर लेते हैं आपकी सुनने की शक्ति कितनी है। करें एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आपको देते हैं। सबके पास डायरी पेन तो है, डायरी पेन है। अच्छा, एक लकीर खींचिए, एक लकीर खींचिए। खींचा सबने? खींच रहे हैं जब। एक लकीर खींच लिया। अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। लिख लिया सभी ने? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर पहले अंतिम अक्षर लास्ट में लिखा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितनों ने पहला और अंतिम, पहला और अंतिम दो दो अक्षर लिखा? तीन चार पांच छह, दो दो, दो दो, पहला और आखिरी। हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। कहा था? क्या किया आपने? क्या किया? हमने क्या कहा था? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर, इतना स्पेसिफिक थे, पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। तो कितना लिखना चाहिए? मन सुनने की शक्ति क्या है? क्यों? प्रॉब्लम कहाँ था, आपके तरफ था या मेरे तरफ? प्रॉब्लम कहाँ था? कलम ने देखा, वो भाई इशारा खाली करता था चेहरे के तो भी सामने वाला समझ जाता था, और यहाँ इतना सिंपल सेंटेंस था कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कहाँ था प्रॉब्लम, आपके तरफ या मेरे तरफ? आपके तरफ या मेरे तरफ? अगर 70% ने या 80% ने अगर गलत किया तो प्रॉब्लम कहाँ था? वाक्य में प्रॉब्लम था। क्यों? इतना सिंपल वाक्य था, वाक्य तो बहुत सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड था? हाँ, दुनिया में कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसके डबल मीनिंग निकलते हैं, लेकिन ये तो सिंपल वाक्य जिसका एक ही मीनिंग निकलता है कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। फिर प्रॉब्लम कहाँ था? सुनने में, सारे लोगों का, या मीडिया वालों की वेवलेंथ ही ऐसी होती है? क्या कहेंगे, क्या ऐसा ही सुनते हैं? प्रॉब्लम कहाँ था? आप भी अंदर में सोच रहे होंगे, इतना सिंपल वाक्य गलती कैसे हो गई? बताएं गलती कहाँ हुई? गलती इसलिए हुई कि बोलने में मैं बहुत क्लियर थी, बोलने में मैं बहुत क्लियर थी, परंतु जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि अगर सुना होता तो सही करते थे, लेकिन आपने सुना नहीं तो क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? बोलने में बहुत क्लियर, वर्बल लैंग्वेज मेरी एकदम क्लियर थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही थी। बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। ये एक उंगली ने सबको मिसगाइड कर दिया। समझ में आई बात? और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। सामने वाला बोलने में बहुत स्पष्ट बोलता होगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी उसके वर्बल एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करती है। ऐसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, कोई टेलीफोन पर बात कर रहा है और सामने वाला देखता भी नहीं, लेकिन फिर भी आदत पड़ी है हाथ हिलाने की, बात करने की। हम इतने सारे एक्शन कर लेते हैं और तीसरा व्यक्ति हमारा एक्शन देख रहा है, वो मैसेज नहीं सुन रहा है, एक्शन देख करके मैसेज समझने का प्रयत्न कर रहा है। और फिर वो तीसरे को फोन करके कहता, अरे अभी मैंने देखा ना, वही बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? अरे वही थी जो मना किया था, वही बात किसी से कह रहे थे। और क्या होता है, इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है जब वो बात घूमते घूमते आपके पास आएगी। आपको लगेगा मैंने तो कहा ही नहीं, ये कहां से बात आ गई, मैंने कहा ही नहीं किसी से। आप याद करते हैं, भाई मेरे मुख से कभी निकली हो सामने? अरे जरूर निकली होगी। अरे नहीं निकली, मैंने बोला ही नहीं ये बात किसी से, कही नहीं। तो क्या कहते हैं दूसरे साथ वाले? बिना आग के धुआं थोड़ी निकलता है, जरूर कुछ तो बोला होगा आपने। अरे भाई कुछ नहीं बोला, और वहां इतनी बड़े झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कारण क्या हुआ? इसीलिए कहा कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, कल शायद फेशियल कम्युनिकेशन से वो यही हमें भी सिखाना चाहते थे कि बिना आवाज के भी शायद इतनी अच्छी तरह से अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आज वर्बल कम्युनिकेशन में इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आवश्यकता ये है कि शायद हमें सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति को बहुत अच्छे से ग्रहण करने की जरूरत है, राइट? तो मुख्य शक्ति जो आज के युग में चाहिए, सुनने की शक्ति। और गीता में भगवान ने यही किया, पहला अध्याय अर्जुन बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और भगवान सुनते जा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद 18 अध्याय, 17 अध्याय जो सुनाया, तब अर्जुन को सुनना पड़ा, है ना? लेकिन पहले अध्याय भगवान को इसीलिए कहा जाता है। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं ना, सबसे बड़ा लीडर था। क्यों? क्योंकि उसमें सुनने की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। तो जो व्यक्ति सुनने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है, वो जीवन के अंदर बहुत कुछ करने की शक्ति भी रखता है ना? तो इसीलिए सबसे पहली शक्ति जो चाहिए जीवन के अंदर, सुनने की शक्ति। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी शक्ति जो आवश्यक है, मेंटल अवेलेबिलिटी। कि कई बार हम हाजिर है वहां पर, लेकिन हाजिर होते हुए भी वहां पर नहीं है, मेंटल अवेलेबिलिटी हमारी नहीं है। फिजिकल अवेलेबिलिटी हमारी है, फिर भी सुनते हुए भी नहीं सुन सकते। तो इसीलिए सुनने की शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति जो चाहिए, हमारी मेंटल अवेलेबिलिटी चाहिए। मेंटली अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों है तभी हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा, और जब पूरा इन्फॉर्मेशन आता है तो परिस्थिति को समझने की, आंकने की शक्ति हमारे अंदर आती है, परखने की शक्ति कि अभी इसमें से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मिली उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेना यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। तो ये चारों चीज जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है, क्योंकि तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। अगर ठीक से सुना नहीं, मेंटल अवेलेबल नहीं रहा, तो बहुत इन्फॉर्मेशन हमारी मिस हो जाती है, जिस कारण जो परखना चाहिए वो नहीं होता है, और जो डिसीजन लेना होता है इम्पोर्टेंट, जैसे बहन ने कहा कि कोई भी चैलेंज, आज दुनिया में इतनी चैलेंजेस है, इतनी चुनौतियां मनुष्य के सामने आती है, लेकिन इन चुनौतियों को सहजता से पार करने के लिए, विदाउट स्ट्रेस पार करना है तो क्या चाहिए। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, चैलेंजेस हर इंसान के लिए है, बट फॉर सम, किसी किसी के लिए यही चुनौतियां अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती पछाड़ने का अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है, किसको? बहुत सुंदर वहां लिखा था, चुनौती के वक्त, चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, राइट डिसीशन एट द राइट टाइम, चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। और चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय ले लेता है तो क्या होगा, वह अवसर के द्वार बंद हो जाते सदा के लिए, और मनुष्य को बाद में इतना पश्चाताप होता है, पछाड़ने वाला अनुभव वो करता है, अरे गलत निर्णय हो गया, क्या करे, उस वक्त ये बात ध्यान में ही नहीं आई, ये समझ में ही नहीं आया, इसीलिए हमारा ध्यान ही नहीं गया और हमने गलत निर्णय ले लिया। तो एक गलत निर्णय से व्यक्ति को जीवन भर कभी कभी पश्चाताप करना पड़ता है। और वो गलत निर्णय क्यों लिया, तो कहते हैं माइंड टेंशन में था, स्ट्रेस बहुत था, कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी इसीलिए। और क्लैरिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि शायद हमारे पास पूर्ण इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। इसीलिए सुनने की शक्ति बहुत सबसे पहला नंबर। तो ये चारों शक्ति, सुनना, मेंटल अवेलेबल और परखने की और डिसीशन, तभी यथार्थ डिसीशन हम ले सकते हैं और जीवन की हर चुनौती में अवसर के द्वार खुलते जाते हैं और वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है, स्ट्रेस नाम की चीज उसके जीवन में नहीं होती। ये चारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे चार का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो पांचवी शक्ति है सहन शक्ति, किसी ने, और ये चारों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। पांचवी शक्ति है सहन शक्ति, किसी ने पहली शक्ति सहन शक्ति बताई थी, लेकिन यहां आज हम देखेंगे पांचवी शक्ति है सहन शक्ति। सहन करना, व्यक्ति की अंदर की शक्ति जब होती है तभी वो सहन कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि कायर व्यक्ति सहन करता है, नहीं, कायर कभी नहीं सहन कर सकता है। कायर तो जल्दी रिएक्शन में आ जाता है, तूफान मचाना शुरू करता है, लेकिन जिसके पास आंतरिक शक्ति होती है वही सहन करने की शक्ति रख सकता है। लेकिन सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी है एडाप्टेबिलिटी, समय परिस्थिति स्थान सब देखने के बाद अपने आप को फ्लेक्सिबल करके अडॉप्ट कर लेना। आज यही फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर बहुत कम हो गई है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबल मनुष्य को जितना आज के युग में, लेकिन कब होना है, कहाँ होना है, कितना होना है, कैसे होना है, ये मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, ये समझदारी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो बॉयल फ्रॉग की तरह हो जाएगा, बॉयल फ्रॉग। संसार के अंदर एक प्राणी है मेंढक, मेंढक के पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि उसको अगर पानी के बाहर रख दो तो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडाप्ट कर लेता है और जी सकता है, और ठंडे पानी के पॉट में डाल दो तो वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, एडाप्ट कर लेता है और जी सकता है। उस पॉट को उठाओ, स्टोव पर रखो और धीमी आंच पर पानी को गर्म करना चालू करो। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो फ्रॉग समझता है मुझे तो आता है एडाप्ट करना, एडजस्ट करना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता जाता करता जाता करता जाता, थोड़ा गर्म हुआ फिर एडजस्ट करता, थोड़ा गर्म होता फिर एडजस्ट कर, वहां तक एडजस्ट कर लेता है कि पानी उबलने की तैयारी पर है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे ही पानी उबलने लगता है उसके बाद नहीं होता है, और सारी शक्ति तो उसको उसने एडजस्ट करने में लगा दी, अब उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं रहती है कि उस पॉट से बाहर कूद जाए और वो बॉइल टू डेथ खत्म हो जाता है, है ना? अगर पहले ही जैसे ही पानी गर्म होने लग उसी समय कूद जाता था, बच जाता था। ठीक इसी तरह आज के युग में दूसरा प्राणी इस कैपेसिटी के साथ अगर है तो वो है मनुष्य। कहाँ एडजस्ट करना नहीं पड़ता है? परिवार में एडजस्ट करो, समाज में एडजस्ट करो, कार्य क्षेत्र पर एडजस्ट करो, बच्चों के साथ एडजस्ट करो, माँ बाप बुजुर्ग है उसके साथ एडजस्ट करो। कहाँ नहीं करते हैं, हर जगह करते हैं। अब एडजस्ट करने में मनुष्य भी बहुत माहिर हो गया है, करता जाता। अब उसने परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करो, समस्याओं के साथ एडजस्ट करो, तनाव के साथ एडजस्ट करो, हर चीज के साथ एडजस्ट करना चालू कर दिया, और कभी कभी वो परिस्थिति धीरे धीरे बॉइल होने लगती है, और जैसे ही बॉइल होती है थोड़ी गर्म होती है फिर एडजस्ट कर लेता, फिर गर्म होती है फिर एडजस्ट, और एक समय आता है कि जब क्या होता है, वो परिस्थिति इतनी बड़ी हो जाती है और अब उसमें एडजस्ट करने की ताकत नहीं होती है, वो भी उस परिस्थिति में खत्म हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों सुसाइड क्यों किया उसने? क्योंकि अब उसमें और एडजस्ट करने की पावर नहीं थी। लेकिन अगर पहले ही परिस्थिति जैसे आई उसी समय अगर कूद के बाहर आ जाता था तो उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए समस्याएं पर लोगों के साथ एडजस्ट करना वहां तक तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति समस्याएं तनाव इन सब के साथ एडजस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, परिस्थिति को समझते हुए परिस्थिति को परिवर्तन करो, अपने अधीन करो, परिवर्तन के परिस्थिति के अधीन न हो जाओ। आज मनुष्य क्या हो रहा है? परिस्थितियों के अधीन हो रहा है, इसीलिए जीवन में प्रेशर बहुत अनुभव करने लगा है। परिस्थिति को अधीन करो, समस्याओं को सुलझाओ, समस्याओं के आगे हाथ जोड़ करके भाई समस्या क्या करे, ऐसे हेल्पलेस नहीं बनना है। समस्या है क्या करे, नहीं। इसीलिए पावर टू अडाप्ट बहुत अच्छी पावर है, लेकिन कब, कहां, कैसे, किस समय तक कैसे करना है, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। अगर ये ज्ञान नहीं है, ये मैच्योरिटी नहीं है, ये समझदारी नहीं है, तो परिस्थिति व्यक्ति को खत्म, समाप्त कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ सहन शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। आज बातें तो अनेक आएगी हमारे सामने, लेकिन उन बातों के बीच में भी हमें किस तरह से प्रत्युत्तर देना है, ये जरूरी है। तभी हम जीवन के अंदर भी जिम्मेवारी को उठाने के सक्षम होते हैं। और जब व्यक्ति जिम्मेवारी उठाने के लिए सक्षम है, सही तरीके से प्रत्युत्तर देने की क्षमता को बाहर ले आता है, तभी लोग उसके सहयोगी बन सकते हैं। आठवीं शक्ति सहयोग की शक्ति। तो ये आठों शक्ति बहुत आवश्यक है, उसका आपसी बहुत गहरा संबंध है। सहन शक्ति, जो सहन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो अडाप्ट करता है उसके साथ लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं, जो अडाप्ट नहीं करता, फ्लेक्सिबल नहीं है, उनके साथ कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं होती। तो ये आठों शक्ति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। खाली अंदर ही गहरा संबंध नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी वो बहुत डीपली कनेक्टेड है। सुनने की शक्ति जिसके पास है, मेंटल अवेलेबिलिटी है, वही सहन भी कर लेता है, फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, परखता भी है, निर्णय भी ले लेता है, और जब निर्णय सही लेता है तो उसका प्रतिउत्तर सही निकलता है, और उसको लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो लोगों की बातें सुनने की शक्ति रखता है। तो ये आठों का आपस में भी बहुत गहरा संबंध है। लेकिन ये शक्तियों को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? कुछ वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज बहुत आवश्यक है। बिना वैल्यूज के ये शक्तियों को हम विकसित नहीं कर सकते। जैसे सुनने की शक्ति के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए? व्यक्ति सुन कब सकता है? सुनने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? अच्छा, अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं, कौन सुन नहीं सकता है? हमेशा आप देखेंगे जो इगोइस्टिक पर्सनालिटी होते हैं ना, वो सुन नहीं सकते दूसरे का, है ना? इगोइस्टिक पर्सनालिटी नहीं सुन सकते। तो सुन कौन सकता है? धैर्यता। सुनने के लिए सबसे पावरफुल वैल्यू चाहिए, और वो है धैर्यता, पेशेंस। पेशेंस सुनने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस की वैल्यू, पेशेंस की वैल्यू कहां से आएगी? शांति से। शांति का ही एक स्वरूप पेशेंस है। आत्मा के सात गुण कल आपने देखे, आत्मा के सात गुण में एक गुण शांति है। तो जो अंदर से शांति को इमर्ज करता है, उसके अंदर धैर्यता सहजता से आ जाती है, राइट? मेंटल अवेलेबल کئی لوگ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں بہت بزی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کون اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کر سکتا ہے اور کون اپنے آپ کو اویلیبل رکھتا ہے کہ جب بھی آپ کو چاہیے تو کوئی ہے آپ کی بات سننے کے لیے. تو وہ ویکتی اپنے آپ کو اویلیبل رکھتا ہے کب, جب اس کے اندر نمرتا کا گن ہوتا ہے. نمرتا, جتنی ویکتی کے اندر ہیوملٹی ہے اتنا وہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھ سکتا ہے. جب ویکتی دکھاوے میں ہوتا ہے میں بہت بزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس یہ, وہ کبھی اپنے آپ کو اویلیبل نہیں رکھ سکتا. اور نہیں اویلیبل ہے تو پھر اس کو جو انفارمیشن چاہیے وہ انفارمیشن بھی نہیں ملے گی. تو جیون کے اندر دھیریتا اور نمرتا بہت آوشیک ہے, اسی سے ہی یہ دو شکتیوں کو وکست کر سکتے. اچھا, سہن کرنے کے لیے کون سا گن چاہیے, کون سہن کر سکتا ہے, کون سا گن والا جو ہے وہ سہن کر سکتا ہے, کون سا گن والا سہن کر لیتا ہے, ٹالرنس کس میں ہوتی ہے, اس کے لیے کون سا گن چاہیے. آج ایک ماں بچے کی ہر حرکت کو سہن کرتی ہے. پیار, جہاں پیار ہے اور کشما بھاونا ہے وہی ٹالریٹ کر سکتا ہے. جہاں پیار نہیں کشما بھاونا نہیں وہاں ٹالرنس بھی نہیں. اور اسی طرح فلیکسیبلٹی کس کے اندر چاہیے, کس کے اندر آتی ہے کہ جب ویکتی کے اندر میچیورٹی ہو, کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے, یہ فلیکسیبلٹی میچیورٹی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. بنا میچیورٹی کے فلیکسیبلٹی ہے تو وہ بوائے فراک کی طرح وہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ میچیورٹی بہت ضروری ہے فلیکسیبل ہونے کے لیے. پھر پرکھنے کی شکتی کے لیے کون سے ویلیوز چاہیے, پرکھنے کی شکتی کے لیے کوئی بات صحیح پرکھ سکو, یہ صحیح ہے یہ غلط, کیسے کیسے پرکھ سکتے, اس کے لیے نالج چاہیے, گیان بہت ضروری ہے. کوئی بھی بات کا یتھارتھ گیان ہے تو پرکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیشن پاور, صحیح ڈیسیشن لینے کے لیے کیا چاہیے, کون سی ویلیو چاہیے, صحیح ڈیسیشن لینے کے لیے سٹیبلٹی اندر بہت ضروری ہے, مینٹل سٹیبلٹی. اگر ہمارا دماغ ہلتا رہتا ہے, کبھی ویئرتھ سوچتا ہے کبھی نیگیٹو سوچتا ہے, اس میں جھولتا رہتا ہے, کبھی آپ صحیح ڈیسیشن, کیونکہ اتنی کنفیوز سٹیج میں ہے تو کبھی آپ صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکتے. تو صحیح ڈیسیشن لینے کے لیے سٹیبلٹی بہت آوشیک ہے, مینٹل سٹیبلٹی. اور ریسپانسبلٹی کے لیے کون سی ویلیو چاہیے, ریسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے پاور ٹو کریج چاہیے اپنے پاس میں. بڑے سے بڑے ریسپانسبلٹی اٹھانی ہوتی تو اتنی ہمت چاہیے, ہمت ہے تبھی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ٹیم اسپرٹ کے لیے, ٹیم کریٹ کرنی ہو تو کیا کرنا پڑے گا, ٹیم کریٹ کرنی ہو تو سہیوگ دینا اور لینا آنا چاہیے. کب دینا ہے کب لینا ہے, سہیوگ دینا اور لینا نہیں آیا وہ ٹیم کریٹ نہیں کر سکتا ہے نا. سہیوگ دینا اور لینا آنا چاہیے. اسی لیے بہت سندر کسی نے کہا سہیوگ دینا اور لینا یہ دیوی لکشن ہے, اور سہیوگ نہ دینا نہ لینا یہ آسوری لکشن ہے. کیوں اس کو آسوری لکشن کہا, اس کو دیوی لکشن کہا, آپ نے وہ کہانی سنی ہوں گی دیوتاؤں کی، ایک بار اندر نے دعوت رکھی تو دیو اور اسور دونوں کو انوائٹ کیا، تو اسوروں نے کہا ضرور یہ کوئی اندر کی چال ہوگی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، تو کہا بھائی کوئی چال نہیں ہے، دعوت رکھی ہے اس میں کیا ہے، کہا نہیں ضرور کوئی تو بات ہوگی. پھر اسوروں نے کہا آج ہم ہے نا بعد میں نہیں کھائیں گے، پہلے کھائیں گے، دیوتاؤں سے پہلے ہمارا ٹرن ہوگا. بھائی ٹھیک ہے تم لوگ پہلے بیٹھو، لیکن شرط یہ تھی کہ ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور کھانا کھانا ہے، موڑنا نہیں. اسوروں نے کہا دیکھا، ارے بھائی دونوں کے لیے یہی بات ہوگی، دیوتاؤں کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ دیوتاؤں کے بھی ہاتھ سیدھے رکھے جائیں گے، وہ کھانا کھائیں گے اور آپ کو بھی. تو اتنے بڑھیا بھوجن، 36 پرکار کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی، لیکن کھا نہیں پائے، کھانے جائے بار بار اچھال اچھال کر کے سارا ہال ہی گندا کر دیا ہے نا. اور اس کے بعد دیوتاؤں کو بٹھایا، بڑے پریم سے کھایا. کیوں؟ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھلانا چالو کیا، سارا بھوجن بھی کیا، گندا بھی کچھ نہیں ہوا. تو سہیوگ دینا اور لینا یہ دیوی لکشن ہے، اور سہیوگ نہ دینا نہ لینا، اسوروں کو لینا بھی نہیں آیا دینا بھی نہیں آیا، تو اس کو کہا گیا آسوری لکشن. تو وہاں ہمیشہ ہار ہوتی ہے. تو یہ 8 شکتیوں کے ساتھ 8 ویلیوز کا بہت گہرا سمبندھ ہے. اور یہ نہیں کہ ہمارے اندر یہ ویلیوز نہیں ہے، سارے ویلیوز تو ہے، اور اسی ویلیوز سے ہی یہ شکتیوں کو وکست کر سکتے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو 4 کو ڈیوائیڈ کریں تو 4 شکتی ایسی ہے جو بننا ہوتا ہے، اور 4 شکتی ایسی ہوتی ہے جو کرنا ہوتا ہے، ڈوئنگ اینڈ بینگ. اسی لیے پریکٹیکل آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل اگر دیکھیں گے تو 4 میں سننے کی شکتی، اویلیبلٹی، سہن کرنا اور فلیکسیبل ہونا، یہ ویکتی کو خود کرنا پڑتا ہے، بننا ہے، یو ہیو ٹو بی. اور ڈسیشن لینا، ڈسکریمنیٹ کرنا، ریسپانسبلٹی اور ٹیم ورک، یہ کاریہ ہے، سم تھنگ ٹو ڈو. تو 4 بننا ہے تب 4 کاریہ کر سکیں گے. اگر بننا نہیں آتا ہے تو کرنا بھی اسمبھو ہے، بنیں گے تبھی کر پائیں گے. اور اسی لیے کہا کہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ شکتیاں نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی ہے. اگر ریٹنگ کرے 1 سے 10، 1 to 10 ریٹنگ کرے تو بہت کم. آج کی دنیا میں اتنے چھوٹا چھوٹا حصہ ہو گیا ہے، سننے کا لیول 2%، سہن کرنے کا لیول 2%، بہت کھن ہو گئی. لیکن اگر دیکھا جائے کبھی کبھی ہمارے اندر بہت بڑھ بھی جاتی ہے. اور کیسے بڑھ جاتی ہے؟ اگر منڈے مارننگ ہو، بہت اچھا سیٹرڈے سنڈے آپ کا بیتا ہو، خوشی میں بیتا ہو، تو منڈے مارننگ کیسا ہوگا؟ سننے کی شکتی ہوگی، سہن کرنے کی شکتی بھی ہوگی، فلیکسیبل بھی ہو جائیں گے، بہت بڑا سوروپ ہو جائیں گا. لیکن آفٹر اے ہیکٹک منڈے، شام کو دیکھو جب ویکتی تھکا ہوا ہوتا ہے تب اس کو سننے کے لیے کہو تو کیا کہے گا؟ میرے میں سننے کی طاقت نہیں، اس وقت مجھے کچھ نہیں بتانا، کہیں گے نا اسے. صبح کے سمے میں یہ شکتی اتھا ہے، شام کو یہ کھڑو تو کانٹریکٹ اور ایکسپانڈ ہوتا رہتا ہے. لیکن سدا ایکسپینڈیڈ رہے ایسی ہماری جیون بنانی ہے. میڈیٹیشن، دھیان وہ پرکریا ہے جو ہمیں اندر سے نرنتر ایک ہی ستھتی میں رہنے کے لیے ये प्रेरित भी करती है और शक्ति भी देती है जो हम एक ही स्थिति में सदा के लिए रह सकते और उसका आइडियल। अभी किसकी पूजा गई, किसके दिन गए, गणेश जी के दिन गए ना, और गणेश जी क्या दिखाता है, गणेश जी का स्वरूप हमें प्रेरित करता है ये आठों शक्ति के लिए। सबसे पहले बड़े कान क्या बताता है, अ वेरी गुड लिसनर, इज अ वेरी गुड लिसनर। तो बड़े कान रखना गणेश जी की तरह, और वो भी सूप जैसे कान, फालतू बातों को बाहर फेंको, अच्छी बातों को। सूप क्या करता है, अच्छी चीज अंदर लेता है, फालतू चीज कचरा बाहर फेंकता है। तो गणेश जी के कान भी सूप जैसे दिखाया कि जो व्यर्थ की बातें हैं उसको फेंक देता है, ग्रहण नहीं करता है, और अच्छी बातों को ग्रहण करता है। सुनने की शक्ति तभी बढ़ती है। फिर दूसरी है मेंटल अवेलेबिलिटी, बड़ा सिर। बड़ा सिर किस बात का प्रतीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल अवेलेबिलिटी। समय पर सही बात कहना, समय पर सही बात को सोचना, और समय पर सही बात उच्चारण करना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जिसके पास ये समय सूचकता है वो जीत जाता है, और जिसके पास नहीं है, बोल नहीं पाता है, तो क्या होता है, घुट घुट के अंदर, फिर बाद में पछता, अरे बोल देना चाहिए था मुझे, इतना तो बोल ही सकते थे हम। समय सूचक, लेकिन समय बीत गया, समय बीतने के बाद अगर बोलेंगे तो क्या होगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, ये भी तो समय सूचकता चाहिए। फिर तीसरा है उसका हाथ मुद्रा में है, अर्थात आशीर्वाद के व्यक्ति क्षमा कर देता है, इसलिए गणेश जी को दिखाया क्षमा करने वाला, और इसलिए सहन शक्ति बहुत अधिक है, पावर टू टॉलरेट। साथ ही साथ बड़ा पेट किस बात का प्रतीक, हर बात को समा लेना, एडजस्ट कर लेना, अंदर समा लेना, बाहर नहीं निकालना। तो जीवन के अंदर फ्लेक्सिबल वही रह सकता जो अंदर में समाता जाता है, गणेश जी की तरह। और फिर परखने की शक्ति, उसकी आंखें बहुत छोटी होती है लेकिन दूर तक का देख सकते हैं, दूरांदेशी, पहचानने की शक्ति उसकी बहुत पावरफुल, परखने की शक्ति, छोटी सी सुई भी उसको दिखाई देती है ना, तो पहचानने की शक्ति। और निर्णय शक्ति के लिए एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे का भाव है अनइन्फ्लुएंस्ड एंड डाउन टू अर्थ डिसीशन। एक पैर नीचे जो है धरनी पर जो है, डाउन टू अर्थ डिसीशन, लेकिन इम्पार्शियल, इसलिए दूसरा पैर ऊपर ले लिया, इम्पार्शियल होकर के डाउन टू अर्थ डिसीशन देना। और लास्ट में जो उसके सुंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुंड में इतनी ताकत है, जो कोई अगर बच्चा आ जाए तो उसको इतने हल्के से उठा करके अपनी पीठ पर बिठा देता, और अगर कोई बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ने हो तो उसको भी उखाड़ने की शक्ति क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में गणेश जी को क्या पसंद थे, मोदक पसंद है ना, लड्डू, बूंदी के लड्डू खास पसंद थे, क्योंकि बूंदी के लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कैसे जोड़ सकते हैं बूंदी के लड्डू को, कैसे जोड़ सकते हैं, मिठास, मीठा जरूर चाहिए, जब मीठा ज्यादा होगा तो जोड़ सकेंगे। ऐसे व्यवहार में भी जितना व्यक्ति के अंदर मधुरता है, मिठास है, वो क्या कर सकता है, सभी को जोड़ सकता है समाज के अंदर और लेकर के चल सकता है। तो ये आठों शक्ति उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से दिखाई, और तब उसकी दो पत्नी दिखाई, कौन सी, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि माना सफलता, रिद्धि माना विद द राइट मेथड, राइट मेथड से सफलता को प्राप्त करना। ये नहीं भाई हुक और क्रुक कैसे भी सफलता ही प्राप्त करनी है ना, तो गलत तरीके से नहीं, विद द राइट मेथड। तो रिद्धि माना राइट मेथड, सिद्धि माना सफलता, सक्सेस। कि सक्सेसफुल होना है तो भी राइट मेथड से सक्सेसफुल होना, इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा वास्तव में हर समय उससे ये प्रेरणा लेने की है जीवन के अंदर, कि कैसे इन गुणों को हम विकसित करें अपने जीवन में, कैसे हम अपने जीवन में इन शक्तियों को विकसित करें और उनको लेकर के चलेंगे तो जीवन के अंदर सुख शांति क्या होंगी। आठों शक्ति जिसके पास है, सफलता है विद द राइट मेथड, उसका मन शांत रहेगा। जो कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता है उसका मन शांत होगा, तो कभी शांत नहीं रह सकता है। तो इसीलिए शांति सुख जीवन में अनुभव करना है तो ये आठों शक्तियों को अपने अंदर विकसित करना है, और यही गणेश जी की पूजा यानी हमें पहले अपने अंदर भरना है। इसीलिए कोई भी कार्य करना होता है तो कहते हैं पहले श्री गणेश करो। पहले श्री गणेश करना माना पहले अपने अंदर चेक करो कि ये आठों चीज है, आठों शक्तियां है, फिर आप कोई भी कार्य आरंभ करो तो क्या होगा, सफलता सहज अपने जीवन के अंदर प्राप्त होगी। फिर हमें व्यर्थ चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर व्यर्थ चलेगा। इसीलिए अंत में पूरा करने से पहले एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे कोई ऐसी विधि बताओ कि मैं सदा खुश रहूं, हल्का रहूं, लाइट रहूं, अंदर से एकदम मेरा जीवन बहुत सुंदर व्यतीत हो। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात, चलो पैदल चलते हैं, बातें सुनाता हूं मैं तुम्हें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। और वो गुरुजी अपने शिष्य को लेकर चले पैदल नदी के किनारे किनारे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। शिष्य बड़ा खुश हो रहा था, बार बार कह रहे गुरुजी बड़ी अच्छी बातें सुनाई हमने, बड़ी अच्छी बातें। चलते चलते एक बड़ा सा पत्थर आया बीच में। गुरुजी ने कहा एक काम करो, ये पत्थर उठा लो, आश्रम ले चलते हैं। अब गुरुजी ने कहा तो उठाना तो पड़ेगा, पत्थर इतना भारी था झुक गया। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे लेकिन अब वो शिष्य के अंदर से नहीं निकलता था गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाए। वो पत्थर उठाते उठाते धीरे धीरे उसके कदम पीछे हो गए। गुरुजी बोलते रहे, अपने मस्ती में चलते रहे, बोलते गए। आखिर काफी डिस्टेंस हो गया। जब काफी डिस्टेंस हो गया तो गुरुजी बोलते बोलते कुछ पूछा, अरे भाई तू कुछ बोल ही नहीं रहा, देखा तो बहुत पीछे रह गया। अरे क्या हुआ, कहा गुरुजी आपकी बातें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है, पत्थर का बोझ इतना है। गुरुजी ने कहा फेंक दो, अब चलो। फिर चलने लगा, फिर हल्का हो गया तो कहा अब मजा आ रहा है, अब आपकी बातें सुनने में और आनंद आ रहा है। गुरुजी ने कहा यही बात तो मैं सिखाना चाहता था कि जीवन के अंदर फालतू बोझ इतना उठा के चलते हैं, व्यर्थ की बातों का बोझ इतना उठा के चलते हैं कि जीवन में सुख शांति खुशी आनंद का अनुभव क्या होता है, बहुत दूर हो जाता है। इसलिए जीवन के अंदर सचमुच लाइट रहना है तो अपने मन को व्यर्थ की बातें उठा करके चलने के अभ्यासी नहीं बनो, फालतू बातों को छोड़ो। लेकिन कई लोग कल की बातें, परसों की बातें, 10 दिन पहले की बातें भी उठा उठा करके चल रहे, तो जीवन में आनंद कहाँ से होगा, खुशी कहाँ से होगी, सुख कहां से अनुभव होगा, लाइटनेस ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छी बातें सुनने का भी आनंद तब होता है कि जब फालतू की बातें, व्यर्थ की बातों को हम क्या करें, छोड़ दें, छोड़ दें। लेकिन ये छूटती तो नहीं है, यही तो नहीं छूटती है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने, यही छूटती नहीं है। जब छोड़ोगे कौन छोड़ेगा, जब छोड़ोगे तो छूटेगा, छोड़ेंगे नहीं तो छूटेगा भी नहीं। फिर वो तनाव क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, कई प्रकार की बीमारियां क्रिएट कर, बहुत कुछ आएगा। इसलिए छोड़ो फालतू बातों को। यहाँ आप 3 दिन आए हैं, यहाँ आप सुबह से लेकर, क्योंकि कोई कमरों में आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, जनरल में रखा होगा, लाइब्रेरी में रखा होगा, कोई कमरों में टीवी नहीं है, आज मोबाइल में आजकल होता है टीवी हर एक व्यक्ति के साथ में, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक आपको अच्छी अच्छी बातें जब सुनने का मिलता है, ये समय बार बार नहीं आता है जीवन में। कभी कभी जिंदगी ऐसा मौका दे देती है अच्छी बातें सुनने का, समझने का, तो उस समय उसका पूरा लाभ जब ले लेते हैं तो जीवन सदा के लिए खुशी से, कई बातें ऐसी जीवन के अंदर आ जाती है जो नेचुरल रूप में रहती है, और सदा खुशी का अनुभव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी का, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करके अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो व्यर्थ का बोझ है उसे हमें हटाना पड़ेगा। जैसे आजकल हम अभी कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी कभी वायरस आता है तो स्कैन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक वैसे ही मेडिटेशन भी स्कैनिंग का काम करता है। डेली वो तो हफ्ते या 15 दिन या 1 मास के बाद करते हैं, क्योंकि कोई कोई फाइल ऐसी या वायरस ऐसा आ जाता है जो हमारी काम की फाइलों को भी असर करता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई इवेंट जो वायरस का काम करती है, खुशी है, कोई ने आके एक शब्द ऐसा बोल दिया तो उदास हो गई, तो ऐसे इस मेडिटेशन स्कैनिंग का काम करता है। वैसे दिन में बीच बीच में भी हम मेडिटेशन का अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल हमारा मन बुद्धि स्कैन होता रहेगा, और हम जो कार्य करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और गणेश जी का उदाहरण देकर के बहुत अच्छी बातें जो बताई, गणेश जी को मैनेजमेंट गुरु भी कहते हैं। हम जहाँ भी हैं, चाहे घर, ऑफिस, जो भी हम संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज कर सके, इसके लिए ये 8 पावर्स को हमें अपने जीवन में लाना होगा, और तभी हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से यही आश रखते हैं कि जरूर ये 8 पावर को डेवलप करने के लिए और वैल्यूज को भी हम जरूर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
तो मैंने परमात्मा स्मृति मदद की।
एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है,
एकता लानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
लोक की शोभा बढ़े हो, देव लोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है,
इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है, आ चमक रूहानी लानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।